خوشنودی امام دمارا بلند تر
وفوض عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد لا صل على معجل فرج أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم كثيرا ممن خلقنا تفضيلا صلوات پڑھیں محمد والا محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعجل فرج کرامت انسان ہیومن ایکسلنس کے عنوان سے یہ ہماری ساتویں کڑی ہے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ دین کو ہماری اپنی پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے اپلائی کریں. دین یہ نہیں ہے کہ انسان سیٹ آف آئیڈیاز کو کا عقیدہ رکھے اور اس کے بعد اپنے عمل میں اس عقیدے کو عمل میں نہ لائے, بلکہ دین یہ ہے کہ سیٹ آف آئیڈیاز ہیں, عقائد ہیں, اس عقیدے کے بعد زندگی میں بھی وہ عملی میدان میں جو عقیدہ رکھ رہا ہے اس پر عمل کرے. اسی لیے قرآن جہاں بھی آمنو کہتا ہے وہاں پر عمل الصالحات. یہاں پر یہ آیت سورہ اسراء 17 چاپٹر ہے, اور پھر میری گزارش ہے کہ زندگی کی گہما گہمی میں روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے. ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو بہت کچھ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. قرآن کتاب نور ہے اور کتاب زندگی ہے, بک آف لائٹ, بک آف لائف. اگر نور چاہتے ہیں اپنے زندگی میں قرآن پڑھیں, اگر زندگی چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں. اور قرآن جب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں کئی سوالات ابھریں گے. ان سوالات کا جواب صرف ایک ہی گھر دے سکتا ہے, جو قرآن ہی کا گھر ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کو تدبر کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن. فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا تم تدبر نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس آیت پر غور کیجئے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم کیا ہے، چلڈرن آف آدم کو ہم نے ایکسلنس کیا ہے، ایک آنر دیا ہے جو تمام مخلوقات سے بلند ہے. وہ کیا آنر ہے وہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. پہلا آنر یہ ہے، پہلی بلندی جو انسان کو ملتی ہے وہ مسجود ملک ہے. ملائکہ کو حکم دیا گا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو معلوم ہوا انسان ملک سے بھی افضل ہے، ورنہ مفضول کا سجدہ نہیں ہوتا، افضل کا سجدہ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے اسما سکھائے، کچھ مخصوص نالج دیا جو ملائکہ کے پاس نہیں ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے حوالے امانتیں دی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات، ساری یونیورس کے سامنے، یہ جو ہیوج یونیورس ہے، 170 بلین گیلیکسیز ہیں، ان سبوں نے انکار کر دیا مگر حملہ الانسان، انسان نے اٹھا دیا. تو معلوم ہوا انسان ان خصوصیات کی بنا پر بلند ہے. اور ایک خصوصیت یہ کہ وہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور چیز کے پاس موجود نہیں ہے، وہ مثل اعلیٰ ہے، یعنی وہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم نے بتایا تھا کہ کائنات کی کسی چیز میں یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ریفلیکٹ کر سکے اللہ کی ذات کو. انسان ایک وہ مخلوق ہے جو اللہ کے صفات کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے. ایگزامپل قرآن دیتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار نے اللہ کی رحمت کو اس طرح سے ریفلیکٹ کیا تو وہ خود رحمت بن گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ انسان کی افضلیت. اور ہاں انشاءاللہ روز بتاتے چلے جا رہے ہیں. کل ہم نے بتایا تھا چند باتوں کو، اس سے آگے بڑھنے کے لیے ایک درود پڑھے محمد والے محمد. انسانی زندگی میں مینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے. انسان ان مینٹرز کو سامنے رکھ کر کے یہ کہ زندگی گزارتا ہے کہ یہ ایسے مجھے بننا ہے. کسی کو اسپورٹس مین سمجھ میں آتا ہے تو وہ اسی کی طرح کے کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا، اسی طرح سے بال کاٹے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ ایسے ہی بنے. انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ سامنے نمونے رکھنے چاہتا ہے. قرآن نے بھی انسانی معاشرے کے لیے، انسانی ایکسلنس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نمونے بھیجے ہیں. ان میں سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار کی حیات میں آپ کے لیے نمونہ ہے. ان کی حیات کو دیکھیے اور حیات کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بدلیے. یہاں پر قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان کو ہم نے، بنی آدم کو ہم نے مکرم کیا ہے، ایکسلنس دیا ہے، آنر دیا ہے، ڈگنیٹی دی ہے، اور اتنی ڈگنیٹی کہ اس میں ایبیلٹی ہے کہ سمندروں پہ اور ہواؤں پہ جا سکے، اور پاکیزہ غذائیں ان کو دی ہیں، اور فَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی چیزوں سے افضل بنایا انسان کو. اس سے پتا چل رہا ہے کہ انسان میں جو خصوصیتیں موجود ہیں کسی میں نہیں ہیں، اور اگر یہ انسان حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کو حیوان سے حاصل کرنا پڑتا ہے. مثلا مثال قرآن دیتا ہے، جیسے دو بھائیوں نے ایک بحث کی، قربانی دی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بھائی نے کہا تم کو میں قتل کروں گا، چنانچہ قتل کر دیا. قابل نے حابل کو قتل کیا. اب قتل کرنے کے بعد اس کو پتا ہی نہیں کہ کس طرح سے اس میت کو جو ہے کیا کرے اس کے ساتھ، جس سے کہ پہلا قتل تھا دنیا میں، پہلی مرڈر تھا، کیا کرے اس کے ساتھ، میت کے ساتھ معلوم نہیں ہے. وہاں پر قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے غراب کو مبعوث کیا. غراب کہتے ہیں کوے کو، یعنی کرو کو مبعوث کیا تاکہ وہ سکھائے کہ مردہ بھائی کو کس طرح سے دفن کیا جاتا ہے. فَبَعَثَ اللَّهُ، انبیاء کو بھیجا، انسان نہیں سیکھا، تو جب انبیاء سے نہیں سیکھتا تھا جانور سے سیکھنا پڑتا. अल्लाह जानवरों से सिखाता है कि अब जानवर से सीख, किससे? कव्वे से सीख। तूने भाई से आदम से नहीं सीखा, तब किसे सीखना है? कव्वे से सीखना है। मौला इमाम बाकर अलैहि सलात व सलाम, जी सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह सेहत दे तमाम मोमिनीन जो बीमार हैं उन सबको, इनकी भी, इन मोमिना को सेहत के लिए सब लोग दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। एक किताब है कि बास किताबें घर में होना चाहिए, एक छोटी सी इस्लामिक लाइब्रेरी रखी है, उसमें कुरान है, नहजुल बलागा है, सैफ़े कामिला है, रिसालतुल हुकूक है, उसके साथ ये किताबें हैं जिसका नाम है तहजीबुल इस्लाम, अल्लामा मजलिसी की किताब है, एक अच्छा ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, वो भी आप घर में रखिए। उसमें एथिक्स को, मॉरल्स को बताया गया है कि कब क्या क्या करना चाहिए, मेन्यू डिटेल्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे नाखून के काटने को कब काटना चाहिए, अतः इंसान के बेडरूम एथिक्स को भी बताया गया है, अच्छी चीज़ है। और इस्लाम की खसूसियत यही है, इस्लाम वॉशरूम में भी दुआ पढ़ने को कहता है, वॉशरूम जाते हुए कौन सा कदम रखना है वो बताता है, निकलने के बाद कौन सा कदम बाहर निकालना है वो बताता है, यानी इतने मिन्यूट डिटेल्स बताता है। इसके माने कि इस्लाम स्पिरिचुअलिटी और इंसानी जिंदगी को जुदा नहीं करता, जहां जहां जिंदगी इंसान की है स्पिरिचुअलिटी मौजूद है, मानवियत मौजूद है, रूहानियत मौजूद है, इसको दोनों को हम जुदा नहीं कर सकते। ये इस्लाम की खसूसियत में से किसी के पास, किसी दीन के पास ये नहीं है। जब छोटी छोटी बातें बता दी कि नाखून कब काटना, कहाँ काटना, किस उंगली से शुरू करना, किस उंगली पे ख़त्म करना, और ये भी कि अगर औरतें थोड़ी सी बड़ी रखें 1400 साल पहले, इसका भी तस्करा कि वो रख सकती हैं 1400 साल पहले, इस्लाम ने फैशन को भी औरतें के बताया कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो नाखून के काटने को बताता कि ये नहीं बताया रसूल के बाद कौन आने वाला। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तफसीलात जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे ही बताया जाते परवरदिगार ने, क्योंकि ये चीजें अहम थी बताई, और सबसे अहम जो चीज थी विलायत थी उसको चिलचिलाती धूप में बताया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, सब सबकों को ठंडे ठंडे मुकाम पे दिया, मगर गदीर का सबक जो है धूप में दिया। सब कुछ भुला दो मगर धूप को नहीं भुला सकते, जलने को नहीं भुला सकते, किसी का सर जल रहा है, किसी के पैर जल रहे हैं, और दिल तो कई के जल रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाजिल फरज। तो कुरान ने मिसाल दी है और आइमे मासूमीन ने भी इस मिसाल को समझा, मसला ये जो तहसील इस्लाम के उसमें एक छोटी सी चीज मौजूद है कि कव्वे से किससे क्या सबक सीखना चाहिए, मुर्ग से क्या सबक सीखना चाहिए, चूंटी से क्या सबक सीखना चाहिए, शहद की मक्खी से क्या सबक सीखना चाहिए, है उसमें कव्वे से क्या सबक सीखना चाहिए। अब लीजिए, चूंकि अंबिया से नहीं सीखेगा तो कव्वे से सीखना, कव्वे से तीन चीजें सीखो। नंबर वन, सबसे पहला परंद है जो सुबह उठता है, परंद में सबसे पहला परंद है जो सुबह उठता है, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग किसने उठना, किससे सीखो, कव्वे से सीखो, और वो दुश्मन को करीब यानी वो कमजोर नहीं समझता, जैसे ही आप उसके सामने झुकेंगे उड़ जाएगा, नो चांसेस, मुमकिन है कि पत्थर हमारी तरफ लाएंगे, तो वो जैसे ही वो जरा हरकत देखेगा वो उड़ जाएगा, तो वो दुश्मन को कमजोर नहीं समझता, कभी दुश्मन को कमजोर ना समझो। और तीसरी चीज, यहाँ खुसन मगरिब के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो अपनी प्राइवेट जिंदगी को किसी को बताता ही नहीं, जी वो अपनी प्राइवेसी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो मालूम हुआ कव्वे से कम अज कम वो काला ही सही, वो जानवर ऐसा ही सही, मगर वो अपनी प्राइवेसी को कभी बताता ही नहीं है, बताता है इंसान, ये चीज किसी को बताने की नहीं है। ये सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इकरामत है इंसानी है अजीजाने गिरामी। तो आइए, तो आज एक चीज बताना चाहता हूं मैं, उम्मीद है कि मेरे साथ रहिए। सरकार की सीरत है सीरे नबविया, बहुत ज्यादा साइंस डेवलप हुई सरकार की जिंदगी ही में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगी में आप क्या कैसे करते थे, कैसे चलते थे, कैसे देखते थे, कैसे मिलते थे, कैसे बात करते थे, तफसील है, सब वो जिल्दें लिखी गई हैं। इसका नाम ही सीरे नबविया, सीरत नबी जिसको कहते हैं, सब वो जिल्दों में हर साल वो हर मरतबा उसको रिवाइव किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, अभी भी कई जिल्दें मौजूद हैं। सीरत में है सरकार की कि सरकार जब किसी से मिलते थे, कोई भी तारीख में उन सरकार की, सरकार से पहले कोई सलाम नहीं कर सका, ये तारीख है, यानी जो भी सलाम होता था पहले सरकार करते थे, खास खसूसियत। हत्ता बच्चों को, उमन हमारे यहाँ मैंने देखा बस ऐसे कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, ये छोटा मेरे सामने सलाम नहीं करता, ये उमन गिला करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़े ही सलाम करना चाहिए। इसे सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, बड़े जब सलाम सुन्नत सिखाएंगे तो वाजिब जो है सीखेगा वो सुन्नत भी सीखेगा। तो अजीजाने गिरामी, सरकार जो हमेशा सलाम करते थे। नंबर दो, बात को जब कोई शुरू करता था उस वक्त तक सुनते थे जब तक वो खत्म ना करे, बीच में काटते नहीं थे बात, पूरी बात को सुनते थे सीरत नबविया में। तीसरी चीज जो सीरत बताई जाती है, बहुत ही खूबसूरत सीरत है, वो ये है जब हाथ मिलाते थे, जिसको कहते हैं मुसाफहा, यहाँ पर शेक हैंड होता है, इस्लाम में शेक हैंड नहीं है, ये खास शौक होता है, मत कीजिए, दोनों हाथ मिलाइए, दोनों हाथ में नेगेटिव पर, मैं बच्चों को मिलाता हूँ मन, तो दोनों को हाथों को मिला कहता हूँ ये दो हाथ मिलाओ, इसलिए कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव करंट पास होता है, इसमें मोहब्बत बढ़ती है, लव इंक्रीज। सरकार जो है दोनों हाथों को मिलाते थे, जब मिलाते थे उस वक्त तक खींचते नहीं थे जब तक सामने वाला खुद ना हटा दे। ये सीरत सरकार में है, ये करामत सरकार है। और एक चीज जो बहुत ही अहम है, जो आज के दौर में हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ मुझे आज जरा काम करना है, है मेरे साथ आप लोग सब पढ़िए सलावत मोहम्मद वाला मोहम्मद, सरकार मदीने में तशरीफ फरमा, मदीने में आपके अजवाज हैं और कमरे बना दिए गए थे, हुजरे अलग अलग सब जानते हैं। और ये भी जो इल्जाम है सरकार ने नौ शादियां क्यों क्यों की वगैरह, वो भी उस पर भी करामत को भी बता देना चाहता हूं, ताकि हम लोग खुश नौजवान इसमें कंफ्यूज ना रहे। इंसान को, इंसान की बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं हुसन, मर्द के और औरत के डिफरेंस हैं, मर्द के फैक्टर्स कुछ अजीब गरीब हैं सब जानते हैं, तो इस फैक्टर्स को इंसान ज्यादा महसूस करता है जितना जवान होता है, ठीक है, ये ऑब्वियस है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो हिजरत की है, हिजरत कब की है, 53 ईयर्स में, 53 साल के सिन में, तो इसके माने जवानी कहां गुजरी सरकार की, मक्के में, तो मक्के में कितनी बीवियां थी, एक ही बीवी थी, तो पता चला कि वहां पर ऐश और इशरत का मसला नहीं है, कोई और मसला है। वो मसला क्या है उसका समझना बहुत जरूरी है, मसला है कसरत जब औरतों की हो जाती है उसका सलूशन क्या है। जंगें हो रही थी मुसलमान और गैर मुस्लिम की, मुशरिकीन की, काफिरीन की, नौजवानों का सफाया हो रहा था, औरतों की तादाद बढ़ती चले जा रही थी, अब इन औरतों की तादाद को बढ़ाने के लिए एक सहारा देने वाले की जरूरत होती थी, तो उसके लिए एक नमूने की जरूरत थी। सरकार ने नमूना बताया कि मैं 7, 8, 9 को देख सकता हूं, तुम लोग 1, 2, 3, 4 को कम से कम उनका ख्याल रखो। असल हदफ ये है, मुझे ब्रैकेट में आगे चलते हुए इसको समझाना था, वरना जो है अगर उनको ऐशी करना होता तो जवानी में करते, 53 ईयर्स के बाद, इसके बाद मालूम हुआ ये करामत इंसानी था जो आप सहारे के लिए इन्होंने ये काम किया, और ये इसमें कोई ऐश का तसव्वुर नहीं है। अब आइए, सरकार हर कमरे में अजवाज हैं, तारीख में है, सीरत में है कि सरकार अपनी ही जौजा के कमरे में जाने से पहले नॉक करते थे, इजाजत लेते थे, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, किससे बात करना है, जौजी अपनी जौजा, कौन जौजा कौन है कुरान में, जौजा है हुन्ना लिबासुल लकुम, दोनों इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते, जिस तरह से मर्द और औरत है शौहर और बीवी के लिए, कुरान क्या कहता है, लिबास, लिबास के माने क्लोजेस्ट अगर कोई है तो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसके बावजूद भी सरकार अपनी जौजा के करीब भी जाना, अगर कमरे में जाना है तो पहले नॉक करते थे, इजाजत लेते, क्यों, मुमकिन है कि उस अरसे में जब नहीं है उनकी कोई सहेली आ गई हो, या ऐसी पोजीशन है वो नहीं चाहती कि बीवी उस पोजीशन में अपने शौहर को देखे, तो उसका हक है। इससे फायदा क्या उठाना चाहिए, ये जो हमारे पास चूंकि सवाल आते रहते हैं इसीलिए मैं यहां तो इस मसले को लाया हूं। मसलन आज की दुनिया में टेलीफोन है, अक्सर प्रॉब्लम्स मैंने देखे हमारे पास आते हैं कि औरतें गिला करती हैं, मौलाना मेरा शौहर जो है फोन में झांकता रहता कि वो देखता रहता कि मेरे से मेरे मैसेजेस किसके, क्या ये पढ़ने की इजाजत है। एक लतीफा सुनाता हूँ, मेरे बचपने में मेरे वालिद ने फारसी सिखाते हुए एक किताब थी, उसका नाम है लताइफ। लताइफ के माने ह्यूमर्स, जब इंसान पढ़ता है तो थोड़ा बोर हो जाता है, उसको जरा सा फ्रेश करने के लिए ह्यूमर्स होते थे। एक लतीफा याद है मुझे, एक उस जमाने में खत लिखते थे ना, अभी खत लिख रहा था एक शख्स, पहलू में बैठा हुआ दूसरा देख रहा था, खत लिख रहा था पहलू में बैठा हुआ शख्स देख रहा था। अब ये क्या लिखे खत, उसने कहा अब इस वक्त जो कहन लिखना चाहता हूं मैं नहीं लिख सकता, मेरे पहलू में एक बेवकूफ दीवाना पूरे जितनी बातें लिखना है लिखना। इसके पहलू वाले ने कहा मैं क्या मैं बेवकूफ हूं, मैंने कहा, उसने कहा कि तुमको कैसे मालूम हुआ, तो मालूम हुआ तुम सवाल बड़ी है। हर एक की हत्ता, देखिए ये मसाइल मराजे से पूछे गए हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा इस मसले में परेशान हैं। बाप अपने बेटे की फोन के अंदर झांकने की जरूरत नहीं, इस्लाम में इजाजत नहीं है। ला तजस्ससु वला तहस्ससु, हदीस में है न तजस्सुस रखो न तहस्सुस रखो। तजस्सुस उर्दू में जानते हैं कि हमेशा सोच रहे हैं कि सस्पिशियस जिसको कहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तसव्वुर करते रहना, तहस्सुस एहसास से झांकते रहना। ये तहस्सुस हिस्से है इंसान या आंख के जरिए से या किसी और चीज के जरिए से वो महसूस करना चाहता है कि अपोजिट में क्या हो रहा है या एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है। तो बच्चे अपनी औलाद को, मौलाना फिर कंट्रोल कैसा होगा अगर मेरा बच्चा कंप्यूटर में कोई गलत काम कर रहा हो, कोई चीज कर रहा हो, अगर उसको ऐसी बात है तो आप अपने घर की सेटिंग ऐसी रखिए कि जिससे, जैसे मैं आपको बता दूं आजकल जो है 10-15 साल पहले जो ऑफिस की सिचुएशन थी वो ऑफिस की सिचुएशन में यह था कि दीवारें बनी होती थी, अलग अलग ऑफिसर अलग अलग काम करता था, ये उमन नॉर्म था। मगर आजकल ऑफिसर्स क्या कर दिए हैं, आईने के कर दिए हैं, हत्ता वो जो सीईओ है वो भी देख सकता है, दूसरा क्लर्क भी देख सकता है। क्यों है ये, क्यों किया गया, उसकी हिकमत है। एक तो ये कि वो अब ओपन स्पेस में आ गया है, वो ज्यादा ऐसी वैसी गड़बड़ नहीं कर सकता और अपने काम को पूरी तरह से अदा कर सकता है। तो ये बच्चा, अगर आप चाहते हैं बच्चे की निगरानी करें तो क्या करें, एक ऐसे मकाम पर बच्चे को बिठाएं जहां पर आप चल फिर सकते हो, जहां पर वो बच्चा जो है आपके करीब हो, तो वो सस्पिशन भी आपके पास नहीं रहेगा। वो तरबियत बच्चे की ऐसे कीजिए कि वो आपकी वजह से गुनाह से ना रुके, गुनाह से रुकने पे जो बुलंदी हासिल होती है उसकी वजह से रुके। तवज्जो, यानी हमें ये बात कभी बच्चे को बावर नहीं कराना है कि तुम मेरे वजह से तुम मेरे गुनाह को रुको, नहीं, अल्लाह की अल्लाह ताला देख रहा, देखना भी बड़ी बात है, उससे भी आगे हजरत लुकमान सिखाते हैं अपने टीनेजर बच्चे को। कुरान की आयत है सूरह लुकमान, आप जानते हैं सूरह लुकमान 31 सूरा है और ये इसकी आयत शायद 13 है। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिथकाल हब्बतिन मिन खर्दल इन तकुन फी समावात वल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। बेटा होशियार रहो अमल से, पहले बेटे को सिखा रहे हैं। मैंने कराची में बात बता दी, उसकी ये भी हुई थी, उसकी छोटी सी इन्हें निकाल करके बनाया गया था, बहुत ही सारे वर्ल्ड में वो वायरल हुई है। बच्चे को फोन देने से पहले शऊर दीजिए, उसके बाद फोन दीजिए। बच्चे से ये कहिए कि ये फोन बहुत पावरफुल चीज है, इसमें हौज़े इल्मिया का लेसन भी तुम हासिल कर सकते हो और शरह अमसला से लेकर मुज्तहिद भी बन सकते हो इसी टेलीफोन के जरिए से, इसी टेलीफोन के जरिए से केजी जूनियर से लेकर के पीएचडी भी हासिल कर सकते हो। 11 साल का लड़का आपने देखा होगा वायरल हुआ, हसन अली नाम है, हैदराबाद दक्कन का लड़का है और मुसलमान है। वो 1000 बूढ़े जवानों को, लोगों उससे ज्यादा उम्र वालों के इंजीनियर्स को तालीम देता है 11 साल का। उससे पूछा गया कि कहां से तुमने हासिल किया, कि इसी कंप्यूटर से हासिल किया। तो इस कंप्यूटर ये बेहतरीन सोर्स है अगर इसको सही इस्तेमाल करें। तो बच्चे को सस्पेशन के बजाय ऐसा शऊर दे दीजिए कि बच्चा इससे अच्छी चीजों को हासिल करे, उसकी जिंदगी बना सके। सस्पिशन नहीं कर सकते। इस्लाम में इजाजत नहीं है कि बच्चे के फोन पर झांक रहे हैं, जवजा के फोन पर झांक रहे हैं, शौहर के फोन किससे बात कर रही हैं क्या नहीं। हो सकता उसकी सहेली हो सकता कोई बात। अगर फर्ज कीजिए कि आपने एक सेंटेंस देख लिया बीवी का आई लव यू, और परेशान हो गए, हो भाई किससे लव हो रहा है भाई, अब और 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाया और सूरत बिगड़ी हुई है, हालत खराब है, आखिर बीवी ने क्या हुआ भाई, कि क्या क्या हो गया तुम्हारी हालत आजकल देख रही हूँ परेशान है। अच्छा, तुम किसको आई लव कह रहे थे? अरे भाई वो मेरी माँ थी यार। तो अगर तुमने अगर इंसान सस्पिशियस हो जाता है तो यहाँ तो इसीलिए कुरान कहता है ला तजस्सु वला तख्तब बअदकुम बअदा, गैबत ना करो, गीबत ना करो, बल्कि तजस्सुस भी ना करो, सोचो भी नहीं। इंसान इसीलिए सरकार की हयात को ज़ाते परवरदिगार नमूना बना रहा है। सरकार उस जमाने में कह रहे हैं अपनी जौजा के पास भी जाने के लिए मैं नाक करता हूं। यहां पर भी ये चीजें साफ जाहिर हो जाती है। करामत इंसानी ये नहीं है कि दूसरे को सस्पिशियस निगाह से देखे, बल्कि करामत इंसानी ये है कि दूसरे को अपने से अफजल समझे। सलवात पढ़े मामा। मोहम्मद वाजिल फराज, ये एक हमारे आपके लेवल की। अब जरा सा आगे बढ़कर फजाइल में जब आते हैं हम, मौजूजा किसको कहते हैं? हमारे पास ये जरा बहुत मिक्सअप हो जाता है, बहुत सी चीजें हम लोग मिक्स कर देते हैं। एक मौजूजा अलग है, एक करामत अलग है। जैसे उमूमन हमारे पास अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोजे पर जाकर दुआ करते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और मौजूजा हो गया। उमूमन कहते हैं कि मौला इमाम हुसैन के पास हरम में मौजूजा हुआ, किसी कोई नाबीना लड़की थी उसको आंख हो गई, आंख मिल गई। इसको एजाज नहीं कहते, इसको कहते करामत। क्यों? एजाज मौजूजा क्या है? मौजूजा नबुवत के नबी के नबुवत को साबित करने के लिए जो पेश किया जाता है उसको कहते हैं मौजूजा। इमाम की इमामत को साबित करने के लिए इमाम के सामने जब चैलेंज पेश किया जाता है उसको कहते हैं मौजूजा। जब इमाम की तरफ से अता होती है उसको कहते हैं करामत। जो करामत मैं बात कर रहा हूं आजकल वो ह्यूमन एक्सेलेंस है, इंसानी अखलाक के मेयार की बुलंदी का नाम है करामत। इंसान इतना बुलंद हो जाए वो छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं बल्कि बुलंदियों की तरफ चला जाए। जब बुलंदियों की तरफ चला जाता है तो ये चीजों में उलझता नहीं, उसकी जहन बहुत ज्यादा वसी होता चला जाता है। जब वसी हो जाता है घर में सुकून ही सुकून होता है, फिसाद नहीं होता। सलवात पढ़िए। एक दुरूद अच्छा पढ़े मामा। अल्लाहुम्मा मौला अली की 25 साल की जिंदगी जो इन्हें सरकार के बाद जो खिलाफतों का झगड़ा शुरू हुआ, अमूमन जो लफ्ज हम सुनते हैं मौला खामोश थे, नो खामोश नहीं थे, रॉन्ग एक्सप्रेशन है। जब मसला इमामत था एहतजाज भी किया है, एजिटेट भी किया है, खुतबे मौजूद हैं, बताया व्हाट इज माई पोजिशन इस्लाम में। जैसे तीसरा खुतबा आपका उसका नाम है खुतबा शिक्षकिया, थर्ड खुतबा उठा करके दिए, वल्लाह इब्न अबी कहाफा लकद तकम्मसहा इब्न अबी कहाफा फइन्नहु यअलमु अन्न महल्ली अल-क़ुतब मिन अर-रिहा। खुदा की कसम अबू कहाफा का बेटे ने कमीज खिलाफत को नोच खसोट करके पहन लिया, उसके बॉडी में आती नहीं थी मगर वो पहन लिया। और फइन्नहु यअलमु अन्न महल्ली अल-क़ुतब मिन अर-रिहा, वो जानता था कि मेरा मकाम इस्लाम में ऐसे है जैसे चक्की को दरमियानी कील से होता है, अगर कील हटा दी जाए तो फिर वो चक्की चलती नहीं। शायद मेरा मौला ये कह रहा है कि मैं कायनात का वो दरमियानी कील हूं जिसको हटाने के बाद दुनिया नहीं चलती। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज यन हद यर अन यसाइल वला यर का इलैया तैर, मैं वो फजाइल और इल्म फजाइल का कोह बुलंद हूं जिस तक परिंदा पर मार नहीं सकता, जा नहीं सकता, उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। मौला ने खुद बताया। इसीलिए इश्तबा है कि कभी हम लोग कंपेयर करें, जब हम मिसालें देते हैं तो कभी कंपेयर नहीं करें। इसीलिए खुद मौला ने फरमाया ला युकासो बे आल मुहम्मदिन मिन हादिहि उम्मत अहद, उम्मत अलग है अहले बैत अलग है, कभी ये दोनों को कंपेयर मत करो। ला युका, कभी कियास मत करो कि ये भी इंसान है ये भी, नो, ला युकासु बे आले मुहम्मदिन मिन हादिहिल उम्मते अहद, नहनो हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन, वो दीन के असास हैं, यकीन के सुतून हैं, तो उन तक कोई पर यानी ये मुकाम कोई हासिल ही नहीं कर सकता। मौला अमीर मोमिन की जिंदगी में है कि 25 साल में एक काम जो मौला ने किया था वो डेवलपमेंट ऑफ लैंड है, 1000 खजूर के दरख्त मौला ने लगाए थे, मदीने के चारों तरफ आबाद कर दिया था मौला ने। मौला ने ये कहा कि एक जमाना वो था कि मैं गुर्बत में, हमारे ये अप्स एंड डाउन होते रहे लाइफ में, मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर बनी हाशिम में तकसीम कर दूं तो कमी नहीं, कोई गरीब नहीं रहेगा, इतनी दौलत। यानी मौला ने बाकायदा 25 साल में काम किया। रिवायतों में है कि एक रावी कहता है कि मौला ने एक चश्मा खोदना शुरू किया उस जमाने में, मालूम अभी हमारे बचपने में अक्सर जो है कुएं खोदते थे पानी निकालते थे, अब ये पानी हर जगह खत्म होता जा रहा, ये भी अजाब इलाही है। बहरहाल खुदा इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये अजाब दूर होने का वाहिद तरीका यह है कि मौला का जहूर और दुरूद पड़े मोहम्मद वाले। वाजिल फरजहुम, मौला अमीर मोमिनीन कुआं खोद रहे थे, एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया। मौला ने बहुत कोशिश की और कोशिश करने के बाद बड़ी मेहनतों से, अब ये इसे भी पता चलता है कि इमाम की हयात बाज वक्त एजाजाना तौर पर जो काम करती है वो अलग है, बट जब पर्सनल लाइफ में एजाज इस्तेमाल नहीं करते, वरना फिर हमारे लिए नमूना नहीं होता हमारी जिंदगी के लिए। ये एक वो मुकाम है जहां पर मौला जो है दो उंगलियों से ऐसे दरवाजे को उखाड़ लेते हैं जिसको 40 आदमी खोलते हैं, 40 आदमी बंद करते हैं, दो उंगली में न सिर्फ उखाड़ते हैं बल्कि हथेली में, हाथों में उठाते हैं, हथेली में उठाते हैं, लश्कर को इधर से उधर कर देते हैं। ये एजबत के कहते हैं कलातो बाबा खैबरी ला बेकुवतिल इंसानिया बल बेकुवतिल रब्बानिया, खैबर के दरवाजे को इंसानी कुवत से नहीं रब्बानी कुवत से मैंने निकाला, यह हकीकत है। तो लेकिन जब अपनी पर्सनल लाइफ की जो बात ही है तो वहां एजाज नहीं होता। जैसे शहजादी फातिमा जहरा की चक्की पीसना क्या माने, माने ये मिसाल है, दे आर एग्जाम्पल, दे आर मेंटर, सो दैट हम लोग 1400 साल बाद अगर कोई औरत काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। बेहतरीन एग्जाम्पल है शहजादी ने बताया, कल मैंने इशारा किया था शहजादी की जिंदगी, शहजादी ने अपने शौहर की घर में बैठे हुए मदद की, कैसे, जब जंगें हो रही थी वो अक्सर मौला अमीर मोमिनीन बाहर रहा करते थे, तो शहजादी मौला ला करके जौस लेते थे और चक्की पीसती थी, वो मजदूरी से आटा देते थे, ये मजदूरी से शहजादी ने घर देखा। अब अगर कोई औरत शौहर की मदद कर रही है जॉब के जरिए से, ये सीरत गलत सीरत नहीं है, मगर ये हुदूद शरीयत में हो तो बहुत ही लज्जत है, बहुत ही लजीज है। इसीलिए ऐसे प्रोफेशन इख्तियार करना चाहिए औरतों को जिससे घर बैठे ही वो इनकम का जरिया बना सके, ताकि वो इफ्फत और इस्मत को भी बाकी रखे, करामत इंसानी भी बाकी हो और घर की मदद भी हो सके। इंशाल्लाह सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैं साहब तो सलवात पढ़े अच्छी तरह से इंशाल्लाह। वाजिल फरज, मौला ने शुरू किया उसको, उस बड़े पत्थर को निकालना। आखिर में कहता रावी कहता है कि मौला ने बड़ी मेहनत से निकाला, निकाला तो एक बहुत बड़ा चश्मा फूटा, और जब कभी कुएं में पानी आता, मेरे बचपन में अच्छी तरह याद है, चारों तरफ हमारे मेरे जमीनात में, हमारे वालिद के जो जमीनात हैं उनमें कुएं खुदते थे, जब खुदता तो पहली जो खबर दी जाती थी पानी आ गया, यानी पानी आना जो है बहुत बड़ी बात थी। तो उबरने लगा चश्मा तो मौला ने पहला जुमला कहा, परवरदिगार मैं तेरी रिजा के लिए इसको वक्फ कर रहा हूं ताकि सदक़े जारिया। ये करामत इंसानी है, इंसान जिसको हाईएस्ट हैप्पीनेस का मौका है, आखिरी खुशी का हालत है, उस हालत में अपनी तमाम खुशियों को किसके लिए, इंसानी अकदार को बचाने के लिए वक्फ कर दे। मौला ने कहा कि ये वक्फ कर रहा हूं खुशनूदी परवरदिगार के लिए, जबकि ये चीज बहुत ही अहम चीज है। ये क्या चीज को, इसका नाम है मौजूदा नहीं है, इसका नाम है करामत इंसानी। इंसान जैसे ही किसी मुकाम को हासिल, मसलन आज हम लोग वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री में रहने का पहला एक शर्त यह है कि आप लोगों को नियत करना पड़ता, आपको आपको हमें नियत करना पड़ता कि हम जो हैं किसी ना किसी मोमिन की मदद करेंगे। इसलिए कि ये जो मकामात है ये मकामात दीनी मकामात नहीं है बल्कि ये काफिर हरबी हैं। यहाँ रहने का वाहिद तरीका यही है कि आप अपनी इनकम के जरिए से किसी ना किसी उन अपने ही रिश्तेदारों को करामत के जरिए से बुलंद करें। अगर यह है जज्बा तो आपका यहाँ रहना भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल है और आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी। इसलिए कि रिज्क स्मार्टनेस से नहीं मिलता बल्कि इस रिज्क हदीस में है दो चीजें इंसान चाहता है ज्यादा हो, एक तो हयात लंबी हो, दूसरे रिज्क ज्यादा हो। अगर तुम ये दो चीजें ज्यादा चाहते हो तो सिले रहम करो, यानी अपनी नेकियों के सिले रहम क्या है करामत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद आली मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इस्लाम ने कई मकामात पर इंसानी अकदार को बेहतर करने के लिए, इंसानी किरदार को बेहतर करने के लिए कुरान मजीद से लेकर के अहादीस और सीरत इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम हमें हजारों वाकयात ऐसे मिलते हैं। कल मैंने बताया था कि सीरिया में मौला अली के खिलाफ 70,000 मेंबरों से नमाज जुम्मा के खुतबे में सब वो शतम होता था लेकिन इमाम हसन ने सुना कि वहां से आया वो शख्स आया, मौला का नाम पूछा, पूछा कि आप कौन है, मौला ने कहा कि मेरा नाम हसन इब्ने अली है, वो गाली बकना शुरू। आज हम लोग जो है छोटी बात जो है जरा सा थोड़ा सी बात को हम बर्दाश्त नहीं करते, हमें बहुत ज्यादा लग जाती है, हम सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारे पास वो जो है रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वो उस आय सदर जो है खत्म हो चुका है। अपने सगे भाइयों को हम बख्शते नहीं हैं लेकिन मौला ने जैसे ही सुना वो अच्छी तरह से इत्मीनान से जब उसका स्टॉक खत्म हो गया मौला ने कहा तुम स्ट्रेंजर हो चलो खाना खिला दो। अब इसको क्या कहेंगे आप, एक शख्स गाली दे रहा है उसके खिलाफ तो फौरन जवाब देना चाहिए, हक है, लेकिन जवाब देने के बजाय तुम्हें खाना खिला दूं, उसके बाद लिबास नहीं है तो लिबास पहना दूं, वापस तुम्हें जाने के लिए अगर सवारी नहीं है तो सवारी दे दूं। सवारी के माने क्या है, एक कार दे दूं कार की चाबी, अगर उस जमाने में घोड़ा दे दूं के माने क्या है, एक गाड़ी दे दूं यानी एक पूरी गाड़ी तुम्हारी सवार, किसको, जिसने गाली दी है। ये क्या चीज है, ये करामतें इंसानी है। इंसान अगर इस मुकाम पर आ जाए तो माशरा बहुत ही करीमाना रहेगा, इंसान इस माशरे में सांस लेने के काबिल होगा। यहाँ पे बात चीजें मुझे बहुत जो अट्रैक्टेड हुई जब मैं इब्तिदा में आया था यहाँ पर टोरंटो 40 साल पहले, मैं अपने यानी बेबियों में जाने के लिए बस लेता था। एक मतलब बस में बैठा हुआ था, एक औरत वो स्ट्रॉलर में बच्चे को लाई और डोर के करीब आई तो उसने गाड़ी को पूरी तरह से ड्राइवर ने रोका, वो स्ट्रॉलर को उठा करके उस बच्चे को उठा करके घर के अंदर यानी बस के अंदर अंदर रखा। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने फिर मालूमात की कि आया ये फराइज में से है यहाँ पर ड्राइवर के, कि हर ड्राइवर जो है रोके रोक करके औरत को जो है वो बच्चे को उठा करके अंदर डाले, लेकिन मालूम है कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। मगर ये करामत इंसानी है कि वो महसूस किया कि औरत अगर रुकेगी तो इसके लिए सहारे की जरूरत है, थोड़े मदद की जरूरत है। ज़ाते परवरदिगार के नजदीक ये छोटी छोटी चीजें नहीं है। हदीस में है कि रास्ते में थोड़ा सा कंकर भी हटा देना ये सदका जारिया। अगर कोई इंसान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, एक मुस्कुरा देना ये सदका जारिया है। इस्लाम ने अखलाक के इस मेयार पे बात की है और मुसलमान इसके पीछे हो जाए, इससे इसके माने क्या होगा, कोई ना कोई हमारे अकदार को ले लिया है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है द बेस्ट रिलीजन इज इस्लाम, द वर्स्ट फॉलोअर इज मुस्लिम। बेहतरीन रिलीजन इस्लाम है, जो फॉलो करने वाले कौन है, मुस्लिम। वर्स्ट है क्यों, 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जाकर के देखिए। 3 दिन पहले एक सऊदी में एक शिया नौजवान लड़की को जिवा किया गया, एक्सक्यूट किया गया, किस खजा में उसने मैसेजेस दिए थे कि ये सिस्टम जो है गलत है, ब्रूटल है, इनके पास कोई लॉ नहीं है, ऑर्डर नहीं है। और ये कंट्रीज जो अपने आप को बहुत ज्यादा सिविलाइज कंट्री कहते हैं और पिनलाइज कर देते हैं दूसरे कंट्रीज को, और ऐसे कंट्रीज में कोई पूछते नहीं कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, तुम जो चाहे कर रहे हो,
इसका जवाब तो दो। थोड़ी मरतबा अगर एक छोटी सी गलती होती है इस्लामिक जमहूरिया में तो ये लोग बाकायदा उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानी अकदार ज़िबा हो रहे हैं मगर ये उनके साथ ही बाकायदा ऐलान करते हैं कि हमको उनसे पैसे से मुराद है, हमें उनके कोई किसी चीज से हमारा लगाव नहीं है। इसीलिए विलायत अगर गदीर से हट जाती है इंसान को ठोकर ही खाना पड़ता है। जो लोग गदीर से विलायत लेते हैं उसको हर मुकाम पर बाअजीज भी होंगे, सर कभी झुकाने वाला ने सरदाद व नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
जिंदाबाद। सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला इब्न दाई। मौला ने करबला जाने से पहले का ये, इसने मुझे दोनों के दरमियान खड़ा कर दिया, बैन सिल्लत व दिल्ला। मौला इमाम हुसैन का खुतबा है और मैंने पहले करामत इंसानी के उनवान से पहली मजलिस में पहला खुतबा मौला का मैंने इशारा किया था। इस टुकड़े को हम लोग पढ़ते ही नहीं ज्यादा, उसके बाद वाले टुकड़े करते हैं। इन्नमा खरज तो लितलबिल इस्लाम, मैं काहे के लिए जा रहा हूँ, नाना की उम्मत को इस्लाह कर। मगर उससे पहले क्या है करामत के जुमले, इन्नी लम अखरुज अशिरन व बातिरन व मुफसदन व जालिमन, मैं न ही खुद सताई के लिए, लीडर्स जितने भी होते हैं सब प्रेजिंग के चक्कर में होते हैं अपनी खुद सताई, न ही खुद सताई के लिए सेल्फ कंसीटमेंट के लिए, न ही काहे के लिए गुंडागर्दी के लिए बतीरन, न मुफसिदन न फसाद फैलाने के लिए, न जालिमन। अगर करना था तो मदीने में कर देता था, अगर कुछ गड़बड़ करना था तो चार पांच आदमी वहां जमा हो जाते थे, पूरा मजमा जमा होता था, फिर मालूम हो जाता था कि हाँ क्या है। लेकिन इमाम हुसैन का न, मैं खालिस मुकाम पे ले जाना चाहता हूं जहां पर खालिस लोग रहे हैं। ये खालिस कौन रहे हैं, या हुसैनी रहे या ये है पूरा मुकाम। तो उस एक खुतबे में मौला ने ये जुमला फरमाया, इस दाई वबन दाई, ये जो जुमले हैं अजीब गरीब है, इमाम की जबान से निकले हुए जुमले, ये बगैर बाप का बेटा ये मेरे लिए कह रहा है कि मैं दो चीजों में से एक चीज को कबूल करूं, बैन सिल्लत व दिल्ला, या मौत को या जिल्लत को। उसके बाद मौला का जो मशहूर जुमला है जिसको हमेशा से आप सुनते रहते, है हाथ मिन्नत दिल्ला, मुझे जिल्लत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं एक सेकेंड के लिए मैं जिल्लत को कबूल नहीं करूंगा। ये करबला का ये करामत करबला है, ये करामत इंसानी करबला है। मौला इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूं, एक तो मैं फसाद वगैरह लीडरशिप का मसला नहीं है, मसला मेरे नाना की इन्ना मखरज तो लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मेरे नाना की उम्मत अपने मकाम से हट चुकी है, इन्हें मरकज से हट चुकी है, 50 साल के अंदर 50 इयर्स के अंदर पूरा इस्लाम अप एंड डाउन हो गया। वही जो पीछे कुरान कहता फी दलाली मुबीन, वही आलम पे पहुंच दिया गया। अब जरूरत है कोई ऐसा ड्रास्टिक एफर्ट लिया जाए जिसे फिर मुसलमान अपने मरकज पे आ जाए। मैं तो एक जुमला कहता हूँ, इस जुमले की कदर कीजिए। आज जितने भी मुसलमान जो सिवाय चंद ग्रुप के, 99 मुस्लिम कहते हैं इमाम हुसैन जिसने इस्लाम को बचा दिया, है ना भाई। हुसैन कौन है, सुन्नी हो शिया, हर एक कहता है कि हुसैन कौन है, इस्लाम को बचा दिया। मैं तो कहा जिसने बचा दिया, बचे हुए इस्लाम को लीजिए जी। अगर हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया तो बचा हुआ इस्लाम लीजिए, छुटा हुआ इस्लाम क्यों ले रहे हैं। इमाम हुसैन ने बचा करके बताया एक ही रास्ता है जिससे बच सकता है, वो करबला का रास्ता, कोई और रास्ता नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जिल्लत को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। निकलते हुए तारीख कहती है कि मौला ने जब निकलने का इरादा किया, जब जैनब को इत्तला मिली कि भाई जा रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि या अब्बाब, बाज़ वक्त ऐसे हालात हैं कि इंसान लाख कोशिश करे लेकिन तबीयत चाहती है कि ये घराने को पुरसा ज़रूर दे। जैसे जैसे आशूर करीब आता जाता है लोगों की ख्वाहिश ये होती, मौलाना दो चार जुमले मसाहब के ज्यादा पढ़े, ये तबीयतन तबीयत चाहती कि हम लोग करबला को अच्छी तरह से समझें। बहुत अच्छी तरह से देखिए, जनाब जैनब ने अब्बास को बुला के पूछा, मालूम हुआ कि माजा जा रहा है, जरा तुम अब फहरिस्त को सुनाओ कौन कौन है, और ये भी पता है कि तुम्हारे हाथ में पूरे इंतजाम हैं। हाँ शहजादी सही बात है। अब्बास ने नाम को गिनाना शुरू किया, हुसैन हैं, अब्बास हैं, अली अकबर हैं, कासिम हैं, एक एक नाम सुनाते जाते थे और जैनब का चेहरा देखते जाते थे, चेहरे पर रंग बदलता जाता था। पूरी फहरिस्त खत्म हुई तो जैनब ने पूछा, ए अब्बास क्या मेरा नाम नहीं है इसमें? हजरत अब्बास सर झुकाते हैं, शहजादी नाम तो नजर नहीं आते यहाँ पर, जरा माजाए को बुलाओ। इमाम हसन आए तो पूछा, आप जानते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, मैंने एक लम्हा भी आपका साथ नहीं छोड़ा, क्या आप चाहते हैं मुझे जुदा कर दे? इमाम हसन ने कहा, नहीं 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 ऐसा मसला नहीं है, मसला है तुम्हारे शौहर जिंदा हैं, बगैर उनकी इजाजत के मैं कैसे लिख देता था। जब बात इजाजत शौहर की आए तो जनाब जैनब यहां से अब्दुल्ला रिवारावी हैं कि मैं तब के आलम में तकिए पर सर रखा हुआ लेटा हुआ था, आवाज आई अब्दुल्ला, मैं उसी आलम में हूं। तीन मरतबा जैनब ने अब्दुल्ला 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 कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा, गौर किया जैनब को, अगर मैं इजाजत ने ना देता तो जैनब वहीं मर जाती। मैंने कहा ना 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 जैनब जाओ, तुम इजाजत है तुम जाओ जाओ तुम जाओ, काश मेरी सेहत अच्छी होती मैं भी साथ आता। तारीख कहती 28 रजब को जब काफिला जाने लगा तो आवाज मुनादी ने निदा दी, मदीने वालों दूर हट जाओ, अब बीबियां सवार हो रही। रावी कहता कि मैंने देखा इमाम हुसैन कुर्सी में बाहर घर के बैतुल शरफ के बाहर तशरीफ फरमा है और एक एक बीबी आती है, इमाम जो है एक एक को इशारा करते हैं और एक एक जवान एक एक बीबी को सवार करता है। आखिर में मुनादी ने निदा दी, अरे मदीने वालों आंखों को नीचे कर लो, अब फातिमा की बड़ी बेटी जैनब सवार हो रही है। जैनब बाहर आए, मौला खुद इस्तकबाल को लिए उठे, सामने अब्बास थे दाहने, अली अकबर थे बाएं, हुसैन थे। ये कारवान करीब पहुंचा अमारी के, जब अमारी के करीब पहुंचे तो अब्बास ने जानू पेश किया, अली अकबर ने पर्दे को हटाया, हुसैन ने बाजू को थामा और कहा, ए मेरी बहन तुझे मैं सवार करूंगा। जैसे ही सवार होने लगे पीछे से आवाज आई, जैनब महलन महला, जैनब जरा आहिस्ता पलट कर क्या देखा, अब्दुल्ला दोनों बच्चों को लाए हैं और कह रहे हैं, जैनब मैं करबला में नहीं होऊंगा, मेरी तरफ से तुम आउन को और अपनी तरफ से मोहम्मद को कुर्बान कर देना। अजरकुम अल्लाह, इससे बेहतर रातें नहीं है, इससे बेहतर कोई बातें नहीं है कि हम लोग जरा सा दिल खोल के बगैर कोई परेशानी के। मैं सोचता हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि कितना ये बड़ी दौलत है हमारे पास कि जैसे ही हुसैन कहते हैं वो बीबी आ जाती है। खुदाया खुदाया गोदियों को सलामत रख, मालिक सऊदी को सलामत रख, शहजादी दौलत जाओ हशम की दुआ कीजिए, ये गोदियों की सलामती की क्यों दुआ दे रही है? जब नहीं जवाब मिले तुझे नहीं मालूम करबला में मेरी गोदी खाली। शब आशूर, इमाम हुसैन ने महसूस किया, जैनब बिठाए हुए कह रही अपने बच्चों को, कल मामू जान पर इम्तिहान का दिन है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली मुर्तजा के नवासे हो, अपनी जानों का अजीज ना करना। ये रिवायत अजीब व गरीब रिवायत है, जैनब ने रात भर बच्चों को तैयार किया, इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ सर उठाया,
परवरदिगार कैसी माएं हैं ये, माँ क्या चाहती है? हर एक माँ ये चाहती है कि बच्चे फले फूले, मगर ये कैसी माँ है कि बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब अली अकबर की शहादत हो गई तो औन मोहम्मद को तैयार करके दरवाजे खयाम के पर्दे के करीब ज़ैनब खड़ी हो गई और कहा कि बच्चों जाओ मामूजान से इजाजत लो, और पर्दे से देख रही हैं बच्चे जा रहे हैं मामू के करीब। जब करीब पहुंचे मामूजान इजाजत दीजिए, तो शायद ज़ैनब इशारा कर रही हो कि ये ना हो तो ये करो, ये ना हो तो ये करो, और इधर मामू कह रहे थे कि मैं इजाज़त नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम दो ही बच्चे हो जो माँ के साथ आए हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ। एक मरतबा शायद माँ का इशारा हो चुका था, पैरों पर बच्चे गिर गए कि मामू जान हमें मरने की इजाज़त नहीं देते, हमें माँ ने तैयार करके भेजा। बच्चों को हुसैन ने सीने से लगाया, वापस आए, पूछा बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा इजाजत दे दीजिए, यही मेरे पास तोहफा है, और कोई चीज नहीं है, अगर आप पास होते तो मैं जाना जाने दुनिया की हर चीज कुर्बान कर देती। कहा ज़ैनब तुम कह रही हो, मैं तो जाने की इजाजत नहीं दूंगा, अब्दुल्ला क्या कहेंगे, अब्दुल्ला की क्या मर्जी हो। कहा अब्दुल्ला की इजाजत हो गई है, मैं ये सोचती हूँ कियामत में माँ फातिमा को क्या चाहिए। इजाज़त मिली और बच्चे गए मक्तल में, रजस पड़ी, और तारीख़ करबला में ये रजस भी बहुत मशहूर है, जहाँ मर्दों ने गया चैलेंज किया, आओ मेरे हमारे मुकाबल में, हम लोग जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं। बच्चे लड़ते जाते थे और जिस तरफ चाहते थे निकल जाते थे। एक मक्तल की रिवायत में एक है कि दुश्मनों ने कहा कि ये भाई जब तक मिले हुए रहेंगे कोई इनको रोक नहीं सकेगा, काम करो ये दोनों भाइयों को जुदा करो पहले। किसी तरह से दोनों भाइयों को जुदा करो, ये कुव्वतें जब जुदा हो जाएंगी फिर तुम हमला करोगे तो ये बच्चे हाथ में आएंगे। ये दो फौजें यजीद अब इस काम पे लग गई कि दोनों भाइयों को जुदा करे। आखिर में दोनों जख्मी होकर गिरे। हुसैन की आवाज दी, मामू जान सलाम हो हमारा, एक तरफ से अब्बास एक तरफ से हुसैन गए। मुझे कहने दीजिए, जब मुस्लिम के बच्चों की लाशें गिरी थी कोई उठाने वाला नहीं था? अजरकम अल्लाह, जब जनाजे आए हैं, जब लाशें आए हैं क़याम में, तारीख कहती है कि सब औरतें देख रही हैं किसकी तरफ, ज़ैनब की तरफ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ज़ैनब उबल पड़ेगी, ज़ैनब गिरिया करेगी, ज़ैनब उबल पड़ेगी, ज़ैनब गिरिया करेगी, ये सोच ही रहे हैं। एक मरतबा जैसे ही लाशों को लिटाया गया, दरमियान में ज़ैनब बैठ गई, औन के सीने पे सीधा हाथ रखा, मोहम्मद के सीने पे बायां हाथ रखा, खाक के करबला पे सर रखा, परवरदिगारा ये ज़ैनब की अखीर कुर्बानियां है, तू कबूल फरमा। ये कुर्बानी देने के बाद ज़ैनब ने फिर कभी बच्चों को याद नहीं किया, जब भी गिरिया करती थी, हाय हुसैन, प्यासे हुसैन, मज़लूम हुसैन, कभी औनो मोहम्मद को नहीं। जब रहाई की खबर मिली, शहदा के सर आए, एक एक सर को लेकर के बीबियां बैठ जाती थी, बयान करती थी, किसी शामी औरत ने कहा ये कौन दो बच्चे हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं। ज़ैनब ने कहा इनको बेकस न समझो, ये मेरे माता में हुसैन या हुसैन।
कहती थी ये ज़ैनब, कहती थी ये ज़ैनब, यूं माँ का मान निभाना, यूं माँ का मान निभाना, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद। शबीर का तुम सदका हो अब खेमे में बेटा, तुम लौट कर ना आना, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद। है माँ को यकीन तुम माँ की बात रखोगे, ये याद नहीं खेमों में है प्यासे बच्चे, दरिया पे अगर जाना हो सहरोज के प्यासों, तुम प्यास ना बुझाना, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद। है माँ को यकीन तुम माँ की बात रखोगे, ये याद रहे खेमों में प्यासे बच्चे, दरिया पे अगर जाना हो सहरोज के प्यासों, तुम प्यास ना बुझाना, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद, ए आनो मोहम्मद। हर हाल पे तुम पर लाजिम है शुक्र खुदा का, ऐ शहजादों है सब्र तुम्हारा विरसा, फर्जंद हो तुम ज़ैनब के शिकवा नहीं करना, जब जख्म को बच्चों हो उखड़ने वाली उस वक्त सिरहाने आएंगी मादर मेरी, दिल की ये मेरे ख्वाहिश है उस दम मेरी माँ से, जख्मों को तुम छुपाना ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद जब सांस तुम्हारी बच्चों हो खड़ने वाली उस वक्त सिरहाने आएंगी मादर मेरी दिल की ये मेरे ख्वाहिश है उस दम मेरी माँ से जख्मों को तुम छुपाना ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद जब लाशे उठा कर खेमे में लाए सरवर जैनब ये बोली अशकों को अपने छुपा कर मैं भी न तुम्हें रोऊंगी और मेरे लिए भी आंसू न तुम बहाना ए आनो मोहम्मद आनो मोहम्मद आनो मोहम्मद ताजीम की खातिर क्यों उठते नहीं अब बेटा देखो तो सिरहाने आए हैं मेरे भैया देखो तो सिरहाने आए हैं मेरे भैया जागो मेरे शहजादों क्या भूल गए हो कदमों पे सर झुकाना ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद जब लाशे उठा कर खेमे में लाए सरवर जैनब ये बोली अशकों को अपने छुपा कर मैं भी न तुम्हें रोऊंगी और मेरे लिए भी आंसू न तुम बहाना ए आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद नु मोहम्मद शाबाश मेरे बच्चों हूँ मैं तुमसे राजी ये कह के तकल्लुम खामोश हुई शहजादी नेज़ों पे सफर करके हम राह हमारे तुमको है शाम जाना ए आनो मोहम्मद ए आनो मोहम्मद मोहम्मद है माँ को यकीन तुम माँ की बात रखोगे ये याद रहे खेमों में है प्यास बचे दरिया पे अगर जाना हो सहरों देखे प्यासों तुम प्यास ना बुझाना ए आनो मोहम्मद